आज हम लोग मध्यकालीन असम में अहोम साम्राज्य कैसे स्थापित हुआ और उसकी स्थापना में जो इकोलॉजिकल फैक्टर थे, कैसे जो वेटराइस कल्टीवेशन था इसने अहम भूमिका निभाई और कैसे जो अहोम साम्राज्य ने मिलिशिया सिस्टम स्टैब्लिश किया उसने अहम साम्राज्य स्थापित करने में असम में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की, इसकी चर्चा हम लोग आज करेंगे। जैसा कि आप लोग इस बात से अवगत हैं कि असम राज्य, जो आज का असम राज्य है, वहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है और ब्रह्मपुत्र नदी का एक बड़ा योगदान है वहाँ की कृषि व्यवस्था में। लेकिन इस ब्रह्मपुत्र नदी के का अपना एक इतिहास है, जो उसके जो कोर्सेज हैं वो हमेशा, यानी जो नदी का प्रवाह है वो कई बार बदलता रहा है। माना जाता है कि 1790 से 1860 के बीच ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो गुवाहाटी के नीचे लगभग दक्षिण पश्चिम दिशा में 50 मील के तक शिफ्ट कर गई है। और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी के जो का जो चेंज करने का, जो प्रवाह के बदलने का जो नेचर है, ये एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की है उसने वहाँ के कृषि उत्पादन में, या जो एक तरह से कहें कि जो वहाँ शिफ्टिंग कल्टीवेशन अख्तियार किया गया इतिहास में, उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि नदी स्टेबल नहीं थी, नदी अपना प्रवाह बदलती रहती थी, तो किसी परमानेंट तरीके का एक कनाल सिस्टम डेवलप करना भी बहुत आसान नहीं था। यह भी हमारे लिए जानना जरूरी है कि ब्रह्मपुत्र नदी में हर वर्ष भयावह बाढ़ आती है और असम का एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है, जहाँ पर कृषि हुआ करती है, वो बाढ़ के पानी में डूब जाया करता है। तो ये ज़रूरी है कि जो असम में खेती हो रही है या होती रही है, उसमें किस तरह की खेती की जाए, किस तरह का उत्पादन किया जाए, किस तरह की जो चावल वहाँ का जो मुख्य एक तरह से फसल है, तो चावल भी किस तरह की चावल को उगाया जाए, तो ये बहुत ज़रूरी है पूरे असम में। और इसको इतिहास के कालक्रम में समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम ऐतिहासिक कालक्रम को देखते हैं असम के, तो उसमें अहोम साम्राज्य जो है उसने एक बहुत अहम भूमिका अदा की है। और जो अहोम के इतिहास का एक बहुत बड़ा स्रोत है वो बुरंजी, जो वहाँ की एक तरह का मैनुस्क्रिप्ट है, उसमें वो हमारे बहुत सारे चीज़ें वर्णित हैं जो अहोम के बारे में हमें बताती हैं, और इतिहास के झरोके में अहम के इतिहास को देखने के लिए हमें अग्रसर करती हैं। जहाँ तक पूर्व मध्यकालीन काल का प्रश्न है, असम उस समय से ही कई तरह के ट्राइबल और नॉन ट्राइबल राज्य के संगठन में के दौर से गुजर रहा था और बहुत सारे जो छोटे छोटे नॉन ट्राइबल आर्म्ड जो कंट्रोलर थे, जिनको कि भुयान कहा जाता था या भौमिका के नाम से जाना जाता था, उन लोगों ने धीरे धीरे लैंड पर, विभिन्न हिस्सों पर कब्जा किया था। 13वीं शताब्दी के आते आते एक अपर बर्मा के हिस्से से, जो ऊपरी बर्मा का हिस्सा है, वहाँ से एक दूसरा ट्राइब, जो आउटसाइड ट्राइब जो असम था, जो अब तक असम की धरती पर नहीं दिखा था, वो था अहोम का ट्राइब, जिसको ताई ट्राइब्स के नाम से भी जानते हैं। वो लोग सेटल करते हैं ब्रह्मपुत्र वैली में और उन्होंने 13वीं शताब्दी के बाद धीरे धीरे इस असम में एक अहोम साम्राज्य को स्थापित किया है। ये जो अहोम थे, वे बेसिकली जब अपर बर्मा में थे तो एक पहले से ही कृषि में उनका बहुत योगदान रहा था। वहाँ पर वो कृषि करते थे और एडवांस्ड कृषि करते थे, बहुत अग्रणी प्रकार से कृषि करते थे, उन्नत कृषि करते थे, और वो प्लॉ का यूज़ करते थे, जो फावड़े हैं उनका यूज़ करते थे। और ये ट्राइब जब यहाँ आती है असम के हिस्से में, ब्रह्मपुत्र वैली में, तो अपने साथ ये नॉलेज लेकर आती है। जो अहोम के बीच में जो राजा होता था वो रॉयल क्लैन से होता था, और उसमें से रॉयल क्लैन से ही राजा चुना जाता था। राजा जो है वो खुद अपने नोबल्स को चुनता था और अपने इम्पोर्टेंट पोजीशन और ऑफिसेज में उनको अपॉइंट करता था। किंग जो है वो, जो राजा है वो एक तरह से हम कहें तो अपॉइंटेड हेड था, लेकिन क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो अपॉइंटेड हेड था क्योंकि जो नोबल्स होते थे, जो ग्रेट नोबल्स कहे जाते थे, वो लोग राजा को रिमूव भी कर सकते थे। हम यूं कहें तो जो अहम की जो राजनीति थी वो एक तरह से अर्ध सामंती संगठन थी, और जिसका जो बेस था, जिसका जो आधार था, वो ट्राइबल था। अहम एक साइनोताई लिंग्विस्टिक फैमिली से आते थे, और जो जबकि अगर असम का बाकी ट्राइब्स देखें जो सेटल था, वो तिब्बतो बर्मन स्टॉक से आता था। 16वीं शताब्दी आते आते अहम राज्य छोटे छोटे इलाके को जीतता चला जाता है और अपने साम्राज्य में उसको मिलाता हुआ चला चलता है। बहुत से जो स्टैब्लिश्ड राजतंत्र थे असम के, जो अपने तरह से इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से अर्ली मिडिवल पीरियड में बढ़ रहे थे, जैसे चटिया थे या कचारी थे, इन लोगों के भी किंगडम को वो अहोम जो है धीरे धीरे जब ताकतवर होते चले जाते हैं तो उनको जीतते चले जाते हैं। ये जो एक्सपेंशन है, ये जो अहोम साम्राज्य ब्रह्मपुत्र वैली में एक्सपैंड कर रहा था, ये लार्जली इसका वेस्टवर्ड एक्सपेंशन है, पश्चिम की तरफ एक्सपेंशन है, यानी पूर्वी आसाम से वो पश्चिम की तरफ बढ़ रहे थे। और ये किसके कॉस्ट पर बढ़ रहे थे? चटिया, कचारी और कई बार जो भुयान थे, जो लैंड कंट्रोलर थे पुराने, उनके लैंड्स को भी वो कंट्रोल करता चला जा रहा था। तो अहोम साम्राज्य का जो ये जो संगठन हो रहा था, राज्य का जो ये एक तरह से संरचना हो रही थी, उसके साथ साथ एक और राजतंत्र जो है वो असम में डेवलप कर रहा था, और वो था कोच साम्राज्य। खासकर 16वीं शताब्दी में कोच बड़े इम्पॉर्टेंट राजतंत्र के रूप में उभर रहे थे। ये राजतंत्र, जो कोच राजतंत्र है, ये भी असम का जो पश्चिमी इलाका है वो, वहाँ से भुयान के जो लैंड्स थे उनको कब्जा करके उस पर अपना राजतंत्र स्थापित कर रहा था। और नतीजा ये होता है कि 16वीं शताब्दी का के मध्य आते आते, लगभग 1560-62 के आसपास, कोच और अहोम जो राजतंत्र हैं, इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होने शुरू हो जाते हैं, इनमें संघर्ष शुरू हो जाता है। और इनफैक्ट उसके तुरंत बाद ये जो युद्ध होता है उसके बाद कोच साम्राज्य जो है दो हिस्सों में बढ़ जाता है, एक कोच बिहार के नाम से जाना जाता है और दूसरा कोच हाजो के नाम से। जो कोच हाजो है वही आज का मॉडर्न असम है, जो जो आधुनिक असम है वो कोच हाजो ही है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भुयान थे वो दोनों ही, कोच साम्राज्य और अहोम, दोनों में एक उनका अहम भूमिका थी। दोनों ही साम्राज्य को, दोनों ही राज्यों को भुयान जो हैं, जो पुराने लैंड कंट्रोलर थे असम के, उन लोगों ने सर्विस प्रोवाइड की थी वो, क्योंकि वो इंडिस्पेंसिबल थे, क्योंकि उनके पास फॉर्मल एजुकेशन था पहले से, स्क्रिप्चर्स की जानकारी थी, उन वो लोग मेंसुरेशन जानते थे, अर्थमेटिक जानते थे, उन लोगों को युद्ध कौशल उनमें था। तो ये सारी खूबियां होने के कारण भुयान एक बहुत बड़े सर्विस प्रोवाइडर थे कोच साम्राज्य और अहोम्स के लिए, दोनों के लिए। भुयान ज़्यादातर हाई कास्ट के थे, और बहुत सारे भुयान्स जो हैं ये माना जाता है कि बहुत सारे कायस्थ कम्युनिटी से थे, कई उसमें ब्राह्मण भी थे, कई मुस्लिम कैटेगरी भी थी, इसलिए उनके जो सरनेम आप देखेंगे भुयान के, वो कई बार भुयान है, कभी गिरी है, कभी राय के नाम से जाने जाते हैं, कभी दलाई के नाम से जाने जाते हैं, और खान भी उनकी टाइटल थी। भुयान जो एक सबसे बहुत अहम भूमिका जो भुयान ने अदा की, खासकर अहोम साम्राज्य को स्थापित करने में, वो थी कि जो वर्जिन लैंड थे, जो लैंड जिस पर अब तक खेती नहीं हुई होती थी, उन उस तरह की ज़मीन को खेती युक्त बनाने में भुयान की बहुत बड़ी भूमिका रही। उन लोगों ने पहले तो इस तरह के जो ज़मीनें थी जहाँ पर खेती नहीं हुआ करती थी, पहले वहाँ पर अपने को स्टैब्लिश किया, और वहाँ पर जो डाइक्स थे उनके बनाने में, या वाटर कंट्रोल करने में, उसके निर्माण में, वाटर कंट्रोल सिस्टम के निर्माण में अपना नॉलेज प्रदान किया। कहने का मतलब कि होम्स ने भुयान्स का प्रयोग बांधों के निर्माण में, ताकि बांध बना के नदी के प्रवाह को कंट्रोल किया जा सके, और फिर पानी का जो प्रवाह है वो खेती, जो अब तक ज़मीन जहाँ खेती नहीं हो पाती थी, उन ज़मीनों पर पानी को पहुँचाया जाए, उसमें भुयान्स का सहयोग लिया अहोम साम्राज्य ने। और भुयान ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की इस तरह के डाइक्स, जिसको हम बांध कह रहे हैं, उसको बनवाने में। जहाँ तक अहोम्स का सवाल है, अहोम कोच साम्राज्य या जो अन्य राजतंत्र अहम असम में पनप रहे थे, उनसे अहोम अलग इसलिए थे क्योंकि उनके पास एक नॉलेज था वेट राइस कल्टीवेशन का, यानी गीले चावल की खेती जो वो करते थे, पानी में एक पानी से लबालब खेत में बोना, धान की खेती करना, ये नॉलेज वो लोग लेकर आए थे जब वो बर्मा से आए थे। और इस नॉलेज ने एक उनके जो सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा था, खेती जो इतनी उन्नत हुई थी उनके इस वेट राइस कल्टीवेशन के इंट्रोडक्शन से, इसने अहम साम्राज्य को ताकतवर बनाने में, या चूंकि सरप्लस जब प्रोडक्शन होता है तो ऑब्वियसली आपका रेवेन्यू बढ़ता है, और रेवेन्यू बढ़ने से आपके जो ताकतें, जो मिलिट्री ताकत है वो बढ़ती है, सैनिक संगठन बढ़ता है, आपकी ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा मजबूत होती है। तो वेट राइस कल्टीवेशन ने जो सरप्लस प्रोडक्शन किया, उसने अहम साम्राज्य को काफ़ी ताकतवर बनाया, खासकर जब उनका कोच था जो किंगडम से संघर्ष चल रहा था, तो उसमें अहम ज़्यादा ताकतवर राज्य के रूप में उभर पाए। अहम यहाँ तक इतने ताकतवर हो गए थे कि जो मुग़ल 17वीं शताब्दी में, जब उनका एक तरह से पीक पीरियड था, जब वो एक्सपैंड कर रहे थे पूर्व की तरफ, बंगाल और पूरे इलाके को जीत चुके थे, और असम में भी उन्होंने अपने कदम बढ़ा लिए थे, वहाँ पर उनको अहोम से कंटेस्ट मिला, और अहोम साम्राज्य के अंदर मुग़ल भी इतने ताकतवर होने के बावजूद एंटर नहीं कर पाते हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि अहोम साम्राज्य खुद को अब बहुत ताकतवर बना चुका था। असम में ट्रेडिशनली ड्राई राइस, जिसको कि सूखे चावल की खेती कह सकते हैं, उसका उत्पादन होता था, और बेसिकली जो सूखा चावल की का जो उत्पादन था, ये एक तरह से कम समय का जो मैच्योर वैरायटी चावल को उसमें उत्पादित किया जाता था। इसमें कोई ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती थी, इसलिए कोई इसमें फील्ड में पानी को इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं होती थी, और ये नेचुरल तरीके से जब बारिश होती थी उसके हिसाब से सूखे चावल की खेती ट्रेडिशनली असम में की जाती थी। लेकिन जब अहोम आते हैं तो वो गीले चावल की खेती की शुरुआत करते हैं, वेट राइस कल्टीवेशन शुरू करते हैं, जिसको कि साली के नाम से जाना जाता था। ये ज़्यादा प्रोडक्टिव था, इसमें उत्पादन ज़्यादा होता था, उतनी ही ज़मीन में ज़्यादा उत्पादन होता था, और एक ज़्यादा मेच्योर्ड वैरायटी होता था, चावल की खेती इसमें होती थी। लेकिन इसके लिए सबसे अहम था कि पूरे जो खेत में हमेशा वेट कंडीशंस बना के रखना पड़ता था, और इसमें ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ता था, यानी कहीं पर पहले फसल को एक छोटे से अंकुरित बीज को निकाल कर और फिर उसको गीले पानी में बोना पड़ता था। ये जो वेट राइस कल्टीवेशन है, ये अहोम के आने के बाद बहुत पॉपुलर होता चला गया, और मैंने जैसा बताया, वेट राइस कल्टीवेशन ने उत्पादन इतना अधिक बना दिया कि इससे अधिशेष उत्पादन होने लगा, और अहम साम्राज्य जो है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर साम्राज्य के रूप में उभरा। वेट राइस कल्टीवेशन के लिए दो तरह की इरिगेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता था, जो एहोम्स ने इंट्रोड्यूस की थी ब्रह्मपुत्रा वैली में। एक तो था जो प्राकृतिक प्रवाह सिंचाई, जिसको हम कह सकते हैं ग्रेविटेशनल इरिगेशन, जिसमें स्लोपिंग ट्रैक्स बनाए जाते थे, यानी एक ऊंचाई से अगर जो नदी का प्रवाह आ रहा है या नदी की जो धारा आ रही है, ऊंचाई से उसको काट कर, ज़मीन को वहाँ से हिस्से काट कर स्लोप के थ्रू हिल स्ट्रीम से पानी के प्रवाह को खेत की तरफ मोड़ दिया जाता था। और इसमें बहुत ज़रूरी था कि कई बार बांध का निर्माण करना पड़ता था, खासकर हिल स्ट्रीम्स के आसपास, और अब जो जो अपर एरिया था असम का, और ताकि वहाँ पर बांध बनाकर पानी को इकट्ठा किया जा सके और पानी को खेत की तरफ डाइवर्ट किया जा सके चैनल्स के थ्रू। जो दूसरा टेक्निक था वो था वो बेसिकली वर्षा जल पर आधारित था, और इसमें क्या किया जाता था कि खेत में वर्ष चूँकि असम में ठीक ठाक वर्षा होती थी, अच्छी वर्षा होती थी मानसून के दौरान, तो पानी को खेत में इकट्ठा किया जाता था। और पानी को इकट्ठा करने के लिए क्या किया जाता था कि खेतों को कई करीब करीब 10 यार्ड के रेक्टेंगल ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता था, और मेढ़े बनाई जाती थी ताकि पानी जो है खेत में इकट्ठा हो, क्योंकि जब तक पानी खेत में इकट्ठा नहीं होगा तब तक वेटराइस कल्टीवेशन की जो जो फसल है, यानी आप कहीं से ट्रांसप्लांट करके जो फसल को जब उसमें बोते हैं पानी के अंदर, तो वो तभी संभव था जब पानी इकट्ठा हो खेत में। ये बहुत ज़रूरी था, ये जो नॉलेज था कि रेन वाटर के तहत कितना पानी रखना है खेत के अंदर, कितने लेवल क्या होना चाहिए पानी का, ये और कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, और कितना पानी अगर ज़्यादा हो जा रहा है तो उसको निकलने की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता था जब वर्षा जल पर आधारित खेती की जाती थी। तो ये जो दो टेक्निक थी, ये वेट राइस कल्टीवेशन करने में हमने इनको जब इंट्रोड्यूस किया तो इन दोनों टेक्निक्स का भी इस्तेमाल किया ताकि वेट राइस कल्टीवेशन सक्सेसफुली असम ब्रह्मपुत्र वैली में आगे बढ़ाया जा सके। वेट राइस कल्टीवेशन के अतिरिक्त एहम्स की जो मुख्य शक्ति थी वो थी उनकी जो परंपरागत मिलिशिया प्रणाली है, जो ताई मिलिशिया प्रणाली थी जो वो बर्मा से लेकर आए थे, उस मिलिशिया सिस्टम को जब उन्होंने इस्टेब्लिश किया तो वेट राइस कल्टीवेशन को यहाँ पर लागू करने में उनको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं झेलनी पड़ी, इनफैक्ट इससे मदद मिली। तो ये मिलिशिया सिस्टम क्या था? बेसिकली मिलिशिया सिस्टम ये जो प्रणाली थी, इस प्रणाली में प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के लिए अपनी सर्विस देनी पड़ती थी, यानी हर व्यक्ति राज्य को, वो भले ही युद्ध का समय हो या पीस का समय हो, वो अपना श्रम का योगदान राज्य के लिए देगा। मिलिशिया प्रणाली का जो पूरा संगठन था वो अहोम की जो अर्थव्यवस्था से उससे बहुत कुछ जुड़ा हुआ था। जो अहोम साम्राज्य का जो एंटायर मेल पॉपुलेशन था, पुरुष जनसंख्या जो थी, खासकर 15 से 60 वर्षों के बीच, वो उसको मिलिशिया के नाम से जाना जाता था, और ये मिलिशिया जो है वो पाइक्स के नाम से जाने जाते थे। ये पाइक्स कई यूनिट्स में, गोत के नाम से जिनको जाना जाता था, ये गोत के अंदर संगठित थे, और एक यूनिट जो होता था उसमें 4 एडल्ट होते थे, 4 एडल्ट मेल होते थे, यानी 4 एडल्ट मिल के एक यूनिट गोत का बनाता था। ये रिस्पॉन्सिबल होते थे 4 लोग मिलके कि एक पूरे पूरे साल में वो लोग एक व्यक्ति का श्रम राज्य को देंगे, कहने का मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति रोटेशन पर 3-3 महीने के लिए राज्य के सर्विस में चला जाता था। जब वो राज्य की सर्विस कर रहा होता था तो जो उसकी जमीन थी उस पर या उसके जो परिवार था उसकी देखभाल बाकी 3 लोग किया करते थे। तो इसमें जो ये बेसिकली एक ऐसा संगठन बनाया गया था जिसमें पूरे यूनिट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि वो 1 वर्ष की सर्विस जो है हर प्रत्येक वर्ष ये चारों व्यक्ति मिलकर श्रम का योगदान स्टेट को देंगे। हालांकि युद्ध के समय कई बार जो दूसरा व्यक्ति है या तीसरा व्यक्ति है उसको भी बुला लिया जाता था आर्मी में अपनी सेवा देने के लिए, लेकिन वो बहुत अलग एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होते थे। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक श्रम का योगदान 3 महीने के लिए एक व्यक्ति किया करता था और रोटेशन पर पूरे साल में ये 4 लोग मिलकर 1 साल का श्रम योगदान राज्य को दिया करते थे। इन मिलिशियाज का जो मुख्य योगदान था स्टेट के लिए, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, राज्य का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है खासकर जब वेट राइस इकोनॉमी से चूंकि वो जुड़ा हुआ था पूरा साम्राज्य का की अर्थव्यवस्था, तो वेट राइस कल्टीवेशन के बांध निर्माण में या उस नदी के प्रवाह को डाइवर्ट करने में या डैम बनाने में, इन सब में, या लैंड पर जो ज़मीन है उस पर पानी इकट्ठा करना है, मेढ़े बनानी है, तो इन सारी चीज़ों में ये जो श्रम है, इन मिलिशिया का श्रम का इस्तेमाल राज्य किया करता था। कई बार मिलिशिया जो है कई अनकल्टिवेबल जो लैंड थे, जो गैर कृषिगत ज़मीनें थी उस पर भी खेती करने के लिए इनको उनका इस्तेमाल करता था। कई बार जो फॉरेस्ट लैंड हैं या स्वैम्प्स हैं उनको भी खेती युक्त बनाने में इनका इस्तेमाल होता था। और कई बार कई 100 किलोमीटर की जो नदी के किनारे किनारे एम्बैंकमेंट्स हैं या जो उनके पाथवेज हैं उनके किनारे बनाना या उसमें बांध बनाना, उसके नेटवर्क्स बनाना, ताकि ये जो इनंडेशन है, जो प्रवाह है खेतों में, वो मेंटेन किया जा सके हर वर्ष, खासकर जब ब्रह्मपुत्र अपना प्रवाह बदलती रह रही थी। तो इन सारी चीज़ों को हर वर्ष, चूंकि बाढ़ भी आती थी ब्रह्मपुत्र में, तो हर वर्ष इसको मेंटेन करना एक बहुत चैलेंज था। और उसको अहोम साम्राज्य इस मिलिशिया सिस्टम से बहुत सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर पा रहा था और उसको मेंटेन कर पा रहा था। जहाँ एक तरफ वेट राइस कल्टीवेशन चल रहा था, मिलिशिया सिस्टम चल रहा था बहुत सक्सेसफुली, वहीं 16वीं शताब्दी में जाकर वैष्णव मोनेस्ट्रीज भी जो है, वैष्णव मूवमेंट जो है, आंदोलन जो है, वो असम में पनप रहा था। खासकर ये जो वैष्णवाइट्स थे, ये वैष्णव मोनेस्ट्रीज थी, ये वेस्टलैंड को कल्टीवेशन में ला रही थी, खेती युक्त बना रही थी। और अहम साम्राज्य इसलिए शुरुआत में उनको उनके ऊपर उनको एक तरह से प्रश्रय भी दे रहा है कि वो चूंकि जो खेती युक्त ज़मीनों को खेती जो खेती अभी तक जहाँ खेती नहीं होती थी उसको खेती युक्त बना रहे हैं, तो इसलिए उनके उनके मोनेस्ट्रीज को किसी तरह का प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं किया है होम ने। लेकिन वैष्णव मोनेस्ट्री जो है अपने इस योगदान के लिए एग्जेम्पशन मांगते थे राज्य से कि जो लोग वैष्णव आंदोलन में या वैष्णव मूवमेंट के या मोनेस्ट्रीज में मेंबर हैं उनको मिलिशिया सिस्टम से एग्जेम्पशन मिले, ऑब्लिगेटरी एक तरह से एग्जेम्पशन मिले। और ये एग्जेम्पशन राज्य कई बार इसके लिए मना भी करता था, लेकिन मॉन्क जो है, जो वो लोग हमेशा प्रेशराइज करके इस तरह के मिलिशिया सर्विस से अपने को अलग रख पाने में सक्षम हो रहे थे। धीरे धीरे ऐसी स्थिति बनती है कि 17वीं शताब्दी आते आते ये वैष्णव मूवमेंट बहुत पॉपुलर होता चला जाता है और उनको इनफैक्ट राज्य भी बहुत तरह के रेवेन्यू फ्री वेस्टलैंड भी देना शुरू करता है। लेकिन ये अहम साम्राज्य का जो बहुत जो शक्ति थी, जो मिलिशिया सिस्टम थी, एक तरह से उसको भी चैलेंज कर रहा था। यानी मोनेस्ट्रीज का इमर्ज करना एक तरह से मिलिशिया सिस्टम को ही चैलेंज कर रहा था, क्योंकि धीरे धीरे लोग मोनास्ट्रीज को ज्वाइन करते चले जा रहे थे, क्यों, ताकि उनको राज्य को श्रम का योगदान न देना पड़े। अहम साम्राज्य के जो राजा थे वो इस चीज़ को भांप रहे थे और उनको लग रहा था कि अब धीरे धीरे उनको जो मुग़लों की जो इतनी सक्सेसफुल लैंड रेवेन्यू या लैंड मेजरमेंट व्यवस्था है, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन की व्यवस्था है, कहीं उसको उन्हें अपने राज्य में स्थापित नहीं करना पड़े। और इनफैक्ट अहम साम्राज्य ने 17वीं शताब्दी के अंत आते आते पूरे राज्य में लैंड सर्वे भी शुरू कर दिया था। उन्होंने ये भी देखना शुरू कर दिया था कि कौन से ज़मीनें जो हैं वो जहाँ पर टैक्स लगाया जा सकता है, जहाँ पर अलॉटमेंट करके टैक्स इकट्ठा किया जा सकता है और कितना टैक्स लिया जा सकता है। सो सर्वेयर्स का अपॉइंटमेंट हो रहा था इन इलाकों में। कहने का मतलब कि मुग़ल साम्राज्य के की जो जो भू राजस्व व्यवस्था थी वो एक तरीके से कई बार अहम साम्राज्य के राजाओं को इम्प्रेस कर रही थी, फोर्स कर रही थी, क्योंकि मिलिशिया सिस्टम धीरे धीरे उसको चैलेंज मिल रहा था मोनास्ट्रीज के इमर्जेंस से, क्योंकि अब लोग उतने नहीं मिल रहे थे मिलिशिया सिस्टम में, मिलिशिया प्रणाली में काम करने के लिए। अमलेंदु गुहा का मानना है कि 17वीं शताब्दी आते आते राज्य के लिए, हम साम्राज्य के लिए स्थिति इतनी भयावह हो चुकी थी कि करीब करीब जो राज्य का जो 24 लाख की जनसंख्या थी, जिसमें अगर माना जाए तो 6 लाख श्रम प्रत्येक पायक का देना संभव था, क्योंकि 1/4 अगर देखें तो 6 लाख होते हैं, तो ये 6 लाख जो मेल पॉपुलेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो इन 24 लाख मेल पॉपुलेशन में से 6 लाख श्रम हमेशा राज्य को मिल सकता था। लेकिन मिलिशिया सिस्टम में इतना क्राइसिस आ गया था ये वैष्णव मूवमेंट होने, खासकर जो ममोरियाज का जो वैष्णव सेक्ट था वो धीरे धीरे लोगों के बीच में इतना पॉपुलर होता चला जा रहा था कि अब राज्य को कई बार उसको सप्रेस करना पड़ा इन मोनास्ट्रीज़ को। और ममोरिया रिवोल्ट इनफैक्ट 18वीं शताब्दी आते आते कई बार राज्य ने उनको दबाने की भी कोशिश की। सो ये जो ममोरिया फॉलोअर्स थे, ममोरियाज जो एक वैष्णव सेक्ट के रूप में इमर्ज कर रहे थे, इनका इमर्जेंस भी और मिलिशिया सिस्टम का ब्रेकडाउन होना, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा खासकर अहम साम्राज्य के पतन में। तो जहाँ तक 18वीं शताब्दी का प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में जहाँ मुग़ल साम्राज्य पतन हो चुका था और अहम साम्राज्य को किसी तरह का चैलेंज नहीं था, 17वीं शताब्दी मुग़ल साम्राज्य के लिए एक चैलेंज का पीरियड था, एक एक्सपेंशन का पीरियड था जब अहम्स के लिए एक चैलेंज मिल सकता था, उस समय अहम साम्राज्य ने बहुत आसानी से मुग़लों को चेक करके रखा। लेकिन 18वीं शताब्दी में जब मुग़लों का पतन हो चुका है तो अहम साम्राज्य और आसानी से पनप सकता था, लेकिन उसकी खुद की जो मिलिशिया सिस्टम की जो प्रणाली है उसके रप्चर हो जाने से अहम साम्राज्य की जो मुख्य शक्ति थी ये मिलिशिया सिस्टम, उसमें रप्चर आ जाने से अहम्स का धीरे धीरे पतन शुरू हो जाता है। मिलिशिया सिस्टम की जो ये क्राइसिस है वो खासकर वैष्णव मूवमेंट और ममोरिया मूवमेंट के ज़्यादा पॉपुलर होने से और भी उसको चैलेंज मिलता है, क्योंकि अब वैष्णव मूवमेंट लोग धीरे धीरे ज्वाइन करते चले जाते हैं और लोगों की संख्या 18वीं शताब्दी के अंत आते आते श्रम के योगदान देने के लिए और भी कम होती चली जाती है राज्य के लिए। इसके कारण जो नंबर था पाइक्स का उसने वो चूंकि कम हो चुका है, तो इसने राज्य का जो अपना उत्पादन है, जो सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा था, उसको भी प्रभावित किया है और राज्य का जो रेवेन्यू अपना जो उसका उसकी जो जो एक तरह से कहें जो मेन प्रॉफिट था वो था प्रोडक्शन के थ्रू, सरप्लस प्रोडक्शन के थ्रू। जब उसमें कमी आ जाती है तो बहुत सी चीज़ें, मिलिट्री व्यवस्था, ब्यूरोक्रेसी, ये सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं, अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है और धीरे धीरे अहम साम्राज्य पतन की तरफ बढ़ जाता है।